ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, अध्याय 11 श्लोक संख्या 52 ऐसे बोलते, लेकिन खाली इंग्लिश अनुवाद है मेरे पास। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान वृंदावन चंद्र तात्पर्य आप पाठ कीजिए, लिपि बहुत छोटा है, आप यहाँ आके पाठ कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उससे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहता है।
तात्पर्य इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदूरदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक प्रिय है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्वरूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, इसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवत गीता 9:11 में इसकी पुष्टि हुई है, अवजानंति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितः। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि भगवत संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत संहिता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति है और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, अंततो गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में है वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्वरूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में है वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुख समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावना मुख से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है।
अब सब जानते हैं कि भगवद गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद भागवत में 18,000 श्लोक है और ये दोनों महान शास्त्र के अलावा बहुत शास्त्र है, बहुत श्लोक है वो सभी शास्त्रों में। तो क्यों मैं यही श्लोक आज का कक्ष के लिए चुना? बात यही है कि कल हम यहाँ पर श्री देवभूमि द्वारका धाम पहुँच गए और मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर गया था दर्शन के लिए। नित्यम दर्शन कांक्षिणः। तो वहाँ पर एक स्थानीय पंडा हमको बहुत कृपा करके दर्शन करवाए और हमको मंदिर के अंदर में वो प्रांगण के अंदर में परिक्रमा करवाए और मुझे श्री द्वारकाधीश भगवान के बारे में यही श्लोक उद्धार किया। तो उसी समय मैंने सोचा था कि भगवान का रूप दर्शन सुदूर दर्शन बहुत बहुत कठिन, भगवान का दर्शन प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन है, परंतु मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, सब दर्शन के लिए आए हैं और सब दर्शन किया और लोग का समागम था और आना जाना और खस चूंकि आज वो छुट्टी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग उपस्थित थे और विशेषकर एकादशी दिवस था इसलिए बहुत सारे लोग उपस्थित थे। तो सुदूरदर्शन वो रूप का दर्शन करना कैसे दुर्लभ है। और ये बात चढ़ के भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जो पुण्य भूमि है तो उसी समय रण क्षेत्र होता, तो वहां भगवान श्री कृष्ण ये भगवद गीता ज्ञान इनके प्रिय शिष्य अर्जुन को बताए और वहां पर उपस्थित थे कितने सैनिक करो और सब भगवान का रूप दर्शन किया है और वो रूप दर्शन करने से भगवान की असीम कृपा से तो युद्ध में पराजित होकर तो लगभग सभी मर गए हैं और सब चूंकि भगवान की उपस्थिति में ही शरीर त्याग किया है इसलिए मुक्ति मिल गए सबका। तो कैसे भगवान का रूप दर्शन प्राप्त करना सुदुर्लभ है, ये द्विधा है ना। भगवान जो कहते हैं वो परम सत्य है, वाणी है नहीं, भगवान तो झूठ नहीं बोलते, कभी कभी बोलते। मैंने मकान चोरी नहीं किए, झूठ बोलते कभी कभी, लेकिन भगवद गीता में झूठ नहीं बोलते। भगवद गीता और सब महान महान ऋषि स्वीकार करते हैं कि भगवद गीता वाणी वो ही परम सत्य वाणी ही है। तो इस द्विधा का समाधान कैसे मिलेगा, तो इसलिए हमें भगवद गीता भक्तों का माध्यम से भक्तों के उपदेश के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। जैसे यही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सप्तम अध्याय प्रथम श्लोक, माया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे चरण पर आसक्त हो, माया सक्त मन ओ मन, तुम्हारा मन अर्जुन मेरे चरण पर आसक्त करो और योगम युञ्जन, योग मतलब युक्ति होना, मद आश्रय मेरे शरण लेने से, सुनो मेरी बात सुनो और सुनने से वो सब असंश सब संशय सब संदेह नष्ट हो जाएगा, सभी यथा कि हाँ उसी प्रकार मैं कहूँगा जिससे तुम्हारे सब संदेह नष्ट हो जाए। और भगवद गीता का अंत में अर्जुन वो ही वचन स्वीकार किया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्णा अच्युत, मेरे मन में सब मोह जो था सभी नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति कि मैं आपका सनातन दास हूँ वो पुनः प्राप्त किया हूँ, नष्ट मोह ये सब आपकी कृपा है अच्युत, और इसलिए मैं स्थित हूँ और कुछ संकोच नहीं है मेरा मन में, मैं पूरी तरह तैयार हूँ आपका वचन पालन करना। तो मद आश्रय ये सप्तम अध्याय का प्रथम श्लोक में मद आश्रय शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही प्रश्न हो सकते है कि अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं सानिध्य में थे और इसलिए वे श्री कृष्ण का आश्रय साक्षात ले सकते, परंतु हम 5000 वर्षों के पश्चात इस घर कलयुग में कैसे हम भगवान कृष्ण का साक्षात आश्रय मिलेंगे? तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद की ही बा व्याख्या की कि मद आश्रय शब्द का अर्थ है कि हमें परंपरागत वैष्णव आचार्यों के चरण में आश्रय लेना भगवान श्री कृष्ण का साक्षात आश्रय लेने से अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने से हम उत्साही होंगे श्रीमद् भागवत गीता के सब गुह्य अर्थ समझना। राज विद्या राज गुह्य, ये भगवत गीता वाणी राज विद्या है, सर्वोच्च विद्या है, और राज गुह्य सबसे कठिन है समझना। तो भगवत गीता में और बहुत है वचन जो कठिन नहीं है समझना, जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान का पहला उपदेश है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम सदैव शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं और हम जो देही है, हम जो आत्मा है, हम निर्विकार है, परंतु वो शरीर सदैव विकारित होते हैं। तो उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि मृत्यु का समय क्या होते है, मृत्यु भी एक और विकार है शरीर का, और उस समय शरीर ही आत्मा वो शरीर का त्याग करके अन्य शरीर में प्रवेश करते है। तो ये समझना कठिन नहीं है, परंतु बहुत सारे लोग के लिए कठिन है। बहुत लोग तो यही वचन ग्रहण नहीं करते, जैसे ये भारत में आजकल कितने प्रतिशत है मुस्लिम क्रिश्चियन, लगभग कितने है 18-20 जनसंख्या का, लगभग क्या 18-20 प्रतिशत है नॉन हिंदू, अहिंदू, हिंदू जैन सिख सब स्वीकार करते है कि पुनर्जन्म होते, परंतु मुसलमान क्रिश्चियन नास्तिक स्वीकार नहीं करते, बौद्ध भी स्वीकार करते, लेकिन बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म तत्व ग्रहण करके भी तो आत्मा में विश्वास नहीं करते, बोलते अनात्मा, कोई आत्मा नहीं है, तो कैसे पुनर्जन्म होते है? वे कुछ कहते हैं इसके बारे में। तो जो हिंदू नहीं है, हिंदू सिख बुद्ध जैन ये सब, तो उनके लिए समझना कठिन है, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि शरीर चौके क्या होते हैं, शरीर चौके वो स्वाग जाते हैं, हेवन। अरबी में क्या बोलते हैं मुसलमान धर्म, जन्नत, जन्नत, हम जन्नत जाते हैं। वहां पर भी हम जिहाद करेंगे, सुन्नी सुन्नी शिया वहा। तो ये भगवद गीता वाणी सबके लिए समझना सरल नहीं है, और कुछ है जो विशेष कठिन है। जैसे अष्टम अध्याय के प्रथम दो श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मा, और भगवान कृष्ण का उत्तर है कि अक्षरं ब्रह्म परमं। तो अक्षर क्या है उसको समझना कठिन, ब्रह्म क्या है वो प्रश्न समझना, उत्तर समझना कठिन है। और अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, और स्वभाव इस प्रसंग में स्वभाव का क्या अर्थ है समझना कठिन। भगवान कृष्ण तो ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार उत्तर नहीं देते, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रयाण काले च कथम ये उसी नियतात्म भी। तो कैसे आपका स्मरण करना मृत्यु का समय, वही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता का अष्टम अध्याय का मुख्य विषय है। तो ये द्विधा के बारे में बोलना चाहता था। तो कैसे भगवान का रूप दर्शन सुदुर्लभ होते, तो यही पर द्वारका देवभूमि द्वारका में लाख लाख लोग चतुर्भुज द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं, और रणभूमि कुरुक्षेत्र में करोड़ करोड़ लोग तो भगवान कृष्ण का दर्शन मिले। वो खाली सैनिक नहीं थे, तो एक ऐसा है फौज में ऐसे कहते हैं कि एक सैनिक के पीछे कम से कम 10 आदमी है, क्योंकि कोई कोई रसोई करते है, डॉक्टर भी है, और सप्लाई भी लाना है। एक सैनिक के पीछे 10 आदमी है। तो कुरुक्षेत्र में बहुत बहुत पानी लाना था नहीं, वो आप सब जानते हैं कि पितामह भीष्म तो बाण शयन करने का समय वो जल जल चाहते थे, और वो अर्जुन वो एक भूमि में एक बाण लगा के तो पाताल से जल लाए। तो इतने सारे लोग के लिए वो कितना टैंक का पानी लाना है, और उसी समय तो टैंक का प्रबंध नहीं था। कुरुक्षेत्र में वो सब समंथ पंचक है वो ही है, लेकिन वो सब वो लड़ाई के बीच में सब वहाँ नहीं जा सकते, तो उनके लिए लाना है, और उनके शिविर में वो रहते हैं। तो सब तो जल पीने के लिए तो समंथ पंचक नहीं जाते। तो बहुत बहुत बड़ी व्यवस्था थी, और बहुत बहुत व्यक्ति उपस्थित थे, और सब भगवान कृष्ण का दर्शन, यही बात है। तो यही तात्पर्य से हम यही गुह्य तत्व के बारे में कुछ सूचक मिलते हैं कि भगवान का दर्शन प्राप्त करना तो केवल स्थूल भौतिक अंकों में से नहीं होते। समझना चाहिए भगवान कौन है। जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण एक महान चिंतक थे या दार्शनिक थे, लेकिन कि वे भगवान है तो वो बात स्वीकार नहीं करते, और कि कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। और जैन क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण अभी कहाँ है, भगवान कृष्ण कहाँ है, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश मंदिर में है, वही द्वारकाधीश है, और गोलोक निवसत्या के आत्मभूत, वे गोलोक निवासी है और सबके हृदय में विराजमान है। और जैन सिद्धांत में, अपर सिद्धांत में भगवान कृष्ण कहा है नरक में है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना, बहुत पाप किया कृष्ण अभी नरक में है, ऐसा कहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, मंत्र स्नान करता हूं तो। जैन धर्म में अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं ऐसे जैन डॉक्टर तो अबॉर्शन नहीं करते, तो अगर कोई आते है अबॉर्शन के लिए यही बोलते है तो मैं जैन हूं नहीं करता हूं, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, वो ही डॉक्टर मैं रेकमेंड करता हूं, ऐसे कहते। और आलू नहीं खाते क्योंकि वो आलू तो भूमि से निकालना है, और निकालने का समय ऐसे कुछ कीड़ा का, ऐसे कीड़ा को हिंसा देना है, तो जेट प्लेन में जाते हैं और तेल तो भूमि से लाते हैं, तो सबसे बड़ा मतलब हिंसा पालन करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा हिंसा करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण की निंदा करना। तो बात यही है कि कैसे भगवान कृष्ण का दर्शन करना है। यदि हम द्वारकाधीश का रूप देखने से सोचते कि ये पत्थर पत्थर की प्रतिमा है, तो हम वैसे भगवान का रूप देखते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं देखते। और ऐसे कुछ मायावादी धारणा है कि द्वारकाधीश का रूप वो बहुत शक्तिमान है, आइडल, ऐसे आइडल बोलते हैं, नहीं आइडल अंग्रेजी शब्द आइडल, वो मूर्ति बहुत शक्तिमान है। कैसे शक्तिमान है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, और सब भक्तों अपनी शक्ति मूर्ति में डालते हैं, और वैसे श्री विग्रह बहुत शक्तिमान है, ऐसे कहते हैं मायावादी लोग। तो इसलिए हमें कृष्ण के बारे में परंपरा, शुद्ध वैष्णव परंपरा में से सुनना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत की, यथारूप कृष्ण का रूप क्या है, सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हमारा मध्व गौरीय संप्रदाय में प्रथम आचार्य है, प्रथम है कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और कृष्ण होते चतुर्मुख होई कृष्ण सेवन मुख, पहला आचार्य जगन निवासी है, जगत मतलब कृष्ण के अलावा प्रथम आचार्य है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा कहते ईश्वर परम कृष्ण। कृष्ण तो महान चिंतक है, महान सैनिक है, महान विद्वान है, महान राजनैतिक है, वो सभी बात सही है, परंतु सर्वोच्च विचार है कि ईश्वर परम कृष्ण, वे परमेश्वर है और उनका रूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद तो ये पत्थर का रूप है नहीं, ऐसे नास्तिक लोग कहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत से हम साक्षी गोपाल का प्रख्यान से यही वचन मिलते, उपदेश मिलते कि प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। श्रील प्रभुपाद श्री श्री राधा द्वारकानाथ की विग्रह लॉस एंजलिस में स्थापन करने का समय, रुक्मिणी द्वारकानाथ कौन है, रुक्मिणी द्वारकाधीश है लॉस एंजलिस इस्कॉन में, और द्वारकानाथ भी है। द्वारकानाथ मतलब वो छोटा विग्रह का नाम है द्वारकानाथ, प्रभुपाद वही नाम प्रदान किया। तो उसी समय राधा रुक्मिणी रुक्मिणी द्वारकानाथ का स्थापना का समय श्रील प्रभुपाद सभी उपस्थित भक्तों को बताए कि यही कृष्ण आया है तुमसे बात करने के लिए। और वंशीदास बाबूजी महाराज का नाम दिया प्रभुपाद कि वंशीदास बाबूजी महाराज इनके राधा गोविंद इनके श्री विग्रह के साथ हमेशा बातचीत करते रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि तो आपने आपको तैयार करना चाहिए जिससे कृष्ण यही कृष्ण तुमसे बात करेंगे, यही कृष्ण। ऐसा नहीं है कि वो बाद में हम गलोक जाएंगे उसी समय हम कृष्ण से बात करेंगे, नहीं, यही कृष्ण, यही कृष्ण आया है तुमसे बात करने के, लेकिन उसलिए तैयार होने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद और भी बोले कि यदि तुम सोचते हो कि यही पीतल या पत्थर से बनाए हुए प्रतिमा है तो ये कृष्ण तो तुम्हारे ख्याल में सदैव प्रतिमा जैसे रहेंगे, और यदि तुम स्वीकार करते हो कि यही मेरा प्राण प्रिय भगवान कृष्ण है तो वो कृष्ण तुम्हारे साथ बात करेंगे। तो बात यही है कि हमें भगवद गीता यथारूप शुद्ध भक्तों का परंपरा में से भक्ति तत्व ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण तत्व ग्रहण करना चाहिए। तो सब जो द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं मंदिर में तो धन्य है, परंतु उनका भाग्य और भी बढ़ेगा यदि श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता तैनामूल रूपे यथारूप ग्रहण करेंगे। इसलिए ये संकीर्तन आंदोलन में हम मूर्ति पूजा हम करते हैं, परंतु यही संकीर्तन आंदोलन है और हम कीर्तन और भक्ति तत्व प्रचार को विशेष महत्व देते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में कितने गलत फहमी प्रचलित है, कितना है किसी का अनुमान, कितना है? 100,000 लगभग असंख्य है नहीं, सबके मन में गलत फहमी है कृष्ण के बारे में, खास भारत में, क्योंकि कृष्ण कथा विशेषकर भारत में प्रचारित और प्रसारित है। यहीं पर द्वारका में बहुत कथा होते हैं, भगवत कथा, ब्रजधाम में, गोवर्धन में बहुत कथा होती है, परंतु शुद्ध भक्ति का विचार होते कि नहीं वो संदिग्ध है। तो इसलिए यही श्रवण कीर्तन शिविर में हमारा संकल्प है कि हम श्रील प्रभुपाद और सब पूर्व शुद्ध वैष्णवाचार्यों की कृपा से और उनके आदर्श के अनुसार और उनके उपदेश के अनुसार हम प्रयास करेंगे सुस्पष्ट रूप में कृष्ण तत्व विचार करेंगे, जिससे श्रवण इच्छुक व्यक्ति आप सब का आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। तो कृष्ण कथा मनोरंजन हो सकते, तो बॉलीवुड मूवी देखने से वो बहुत अच्छा है, हम नहीं बोलते कि ये सब कथा तो सब बेकार है, बकवास है, नहीं, वो कृष्ण के बारे में कहते हैं, वो पुण्यशाली लोग आते हैं सुनने के लिए, परंतु यदि वो कथा जो प्रचारित होते उससे यदि मन का रंजन होते और आत्मा की शुद्धि नहीं होते तो वो पूरी तरह परंपरागत कृष्ण कथा नहीं है। वो कथा का प्रभाव ऐसे होने चाहिए, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। वो कथा सुनने से तो सुनने वाला के मन में वो सब गलत फहमी जो है वो सब निकालना चाहिए। और कैसे हम समझ सकते कि निकल गए? तो नष्टो मोह स्मृति लब्धत्व प्रसादान मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह कर्षे वचनं तव। वो सब जो सचमुच कृष्ण कथा सुनते हैं तो सबका जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, सबका पूरा संकल्प होगा कि यही जीवन में मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति करना, और कुछ नहीं है, वही परीक्षा है। तो किसी पुण्य अनुष्ठान में तो सर्वप्रथम संकल्प करना है, तो यही श्रवण कीर्तन शिविर का शुरू के पहले, वास्तव में तो शुरू नहीं हुआ, तो यही अधिवास है, और यही अधिवास में हम संकल्प करते हैं कि हम प्रयास करेंगे केवल उसी प्रकार की वाणी प्रचार करना जिससे अनाभिलाषित शून्य भक्ति के लिए सब श्रोता प्रेरणा मिलेंगे। हरे कृष्ण वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक और विषय है जो बनना चाहता था लेकिन हो गया, तो सब जो कृष्ण का दर्शन मिले कुरुक्षेत्र में मुक्ति में,
तो दर्शन नहीं मिला, सब तो दर्शन मिला, लेकिन पूरी तरफ दर्शन करने से लोग अर्जुन जैसे सिद्धि मिलते, तो मुक्ति प्राप्त करना तो सबसे बड़े वर नहीं है, वही बात है अभी बोल दिया था। जो द्वारकाधीश का दर्शन मिलते तो मुक्ति मिलेंगे, परम भक्ति प्राप्त करना तो दूसरा विषय है।